अघ्रानतिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जगञ्जागुटरोचितं विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसत्तामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजम् ध्यायेन्दाम्
आज बड़ी खुशी की बात है। परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाशिष्मद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की प्रेरणा, उनकी इच्छा अनुकंपा से उज्ज्वल नीन मणि ग्रंथ प्रकाशित हुई। बहुत इस काम के लिए इसमें सबसे पहले बेटी सविता ने दिन रात परिश्रम कर इनकी टीकाओं का अनुवाद अभिज्ञ लोगों से करवाने के लिए बहुत परिश्रम किया, किंतु अभी टीकाओं का अनुवाद अभी इसमें नहीं आया है, केवल श्लोकों का भावानुवाद या तात्पर्य अनुवाद अभी आया है। उसमें अभी टीकाओं के अनुवाद में संशोधन में कुछ अभी विलंब होगा, वो भी बहुत जल्दी हम प्रकाशित करने की चेष्टा करेंगे। साथ साथ में भक्ति रसामृत सिंधु भी हो चुका है, उसमें भी इसने बहुत परिश्रम करके टीकाओं का अनुवाद करवाया। यथाशीघ्र उसको भी अभी टीकाओं के साथ नहीं भी होगा तो मूल टीका और तात्पर्य अनुवाद के साथ में उसको भी प्रकाशित करके यथाशीघ्र उसका फिर टीकाओं का हिंदी अनुवाद के साथ में वो प्रकाशित किया जाएगा। भागवत मरीचि माला का क्या हुआ भाई माधव प्रिया? नहीं है तो वो भी बहुत जल्दी से छपने वाला है। इस छपाई के लिए दिन रात कठोर परिश्रम कर परिक्रमा भी नहीं आ करके शांति बेटी शांति और हमारे विशेष करके माधव प्रिय और कृष्ण कृपा दिन रात परिश्रम करके जो सहायता की सेवा की है उसके लिए हम प्रभु जी के चरणों में गुरु जी के चरणों में और श्रील रूप गोस्वामी के चरणों में भी प्रार्थना करते हैं। उज्ज्वल मणि हृदय उनके उज्ज्वल मणि का भाव उनके हृदय में स्फुरित। बेटी कविता इसका खर्च दिया अच्छा और फिजी के
सुंदर गोपाल
ब्रह्मचारी और अचिंत गौ और उसकी मैया, उसकी मैया ने प्रेरणा किया और उन दोनों ने मिलकर के इसका संस्करण को छापने का आंशिक पूरा पूरा ये दिया और भी ग्रंथों को छापने के लिए हमारी सहायता
को।
अचिंत बहु और सुंदर गोपाल दोनों आ जाए।
अभी टीका कांड बाद में
ये दोनों जमज भाई हैं,
दोनों इंजीनियर हैं
और दोनों इंजीनियर हैं और दोनों मातृ पितृ भक्त हैं। तुम्हारी मैया और बाप के कृपा से तुम लोग हमारी सहायता कर रहे हो।
और एक इसको
आरवाचो खंड खुंडी पट्टा है। ठीक है, जाओ। हमारी गुरु जी की यह आंतरिक इच्छा थी बंगला के जितने भी ग्रंथ हैं हमारे गुरुस्वामियों के वो हिंदी में प्रकाशित हों और हिंदी जगत देखे ये कैसे विद्वान थे, कैसे रसिक थे और उनकी भाषा कैसी है ये लोग जगत के लोग देखें। तो आज केवल भारत में ही नहीं, हिंदी में ही नहीं, इनका अनुवाद सब भाषाओं में, रशियन भाषा, चाइनीज, स्पेनिश, सब भाषा, ब्राजील के कहां ऐसा नहीं है कोई जहां पर अब उड़िया में भी हो, बंगाली में हो, बंगला में और तमिल तेलुगु में भी हो तब ठीक रहे, यहां के लोग भी समझें। आज श्री गौर कुशोदास प्रभात महाराज जी की तिरुभाव दिखी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं भक्ति विनोद ठाकुर का लड़का और सब शास्त्रों में अभिज्ञ, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें अभिज्ञ, और एक निपढ़ अक्षर नहीं जानने वाले वो भी अंधे दृष्टि से, और उनके चरणों में मैं गया और हमको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जब हम प्रभु से पूछेंगे और प्रभु उत्तर देंगे, नित्यानंद प्रभु उत्तर देंगे, तब मैं एक दो नहीं दो दिन दस दिन। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि इस बच्चे को मारेंगे, तब उन्होंने ग्रहण किया। प्रभुपाद जी अपने जीवन से वह पहले घर बार छोड़कर ब्रज में रहते थे, डरा गए इतना कि जमुना का कीचड़, राधा कुंड का कीचड़ खा ले, और ऐसा करने से कुछ दिन में उनकी आंखें भी, कभी कभी सुना है जैसे कभी कभी इच्छा होती खाने की कुछ नीम पत्ता देते, लो ये खाओ नीम पत्ता। समस्त वैष्णव जितने वैष्णव गुण हैं सब उनमें थे, बड़े कठोर थे और बड़े कोमल थे। और एक बार कोसाई जाते राधा कुंडे, एक बार श्याम कुंडे, राधे राधे, एकदम एकनिष्ठ रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी के अनुगमन में राधिका जी के एकांत हृदय के साथ में बोलते। इन्होंने गुरु जी के ऊपर में कृपा की, तुम्हारे जीवन की सब आपद विपदाओं को अपने सिर पर लेता हूं। तुम निर्भीक कंठ से महाप्रभु जी का वाणी और अपने गुरु जी का वाणी विश्व में प्रचार करो। बड़ी बड़ी कठिन समस्याएं हैं, बहुत कठिन कठिन, किंतु सब आंधी की भांति उड़ करके चली गई। गुरु महाराज जी उनकी कृपा का उल्लेख करके रोते थे, उन्हीं की कृपा से आ जा सके। कितना वैराग्य था ये वैष्णव लोग बतलाएंगे। पहले श्रीमान सिंह भक्ति वेदांत पर वैराग्य महाराज जी उनके जीवन के चरित्र के संबंध में बतलाना क्या है? बतलाने का तात्पर्य यह होता है हम उनके गुणों को ग्रहण करते हैं, इसलिए गुणों को स्मरण करो कि उनके इन अपराधित गुणों को हम लोग अपने हृदय में धारण कर सकें।
কারণ शास्त्री भक्ति भगवत समझते महत्व ना মনে রথা হৃদয়ের প্রতি ভগত যাদের ভক্তি হবে ভগবানের প্রতি শুধু ভগবান কেন তার আজিকালি যতগুলো দেবতা আছে সবাই সন্তুষ্ট হবেন এবং তাদের গুরুগুলো তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য করে দেবেন তিনি সর্বচিন্তায় পারগত হবেন শাস্ত্রে বলেছেন গুরু পাঁচ পদ্মে যদি তার নিষ্ঠা ভক্তি জগৎ তারিখে ধরে সেই মহাশক্তি তার মধ্যে একই সুতরাং তিনি তার আদর্শ দেখালেন যে জগৎকে যে দেখো প্রভুপাদ সেই কথায় প্রভুপাদ নিজে বলছেন যে আমি তো সর্ববিদ্যায় পারঙ্গত কিন্তু আমাকে সবাই তো লুফে নিত কিন্তু উনি বারবার প্রত্যাখ্যান করছেন জাগতিক বিদ্যার দ্বারা হয় না পারমার্থিক কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয় পারমার্থিক কল্যাণ লাভ করতে গেলে দ্বন্দ্ব বিনয় ভাব অবসম্ভব চাই প্রভুপাদকে তিনি তিনবার না চারবার প্রত্যাখ্যান করলেন পরবর্তীকালে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এসে বললেন যে ছেলেটাকে মেনে ফেলবেন আপনি কৃপা করবেন তিনি কৃপা করেছিলেন সুতরাং আমরা একটু বুঝতে পারি যে গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় হচ্ছে আমাদের ভজন রাজ্যের একমাত্র পাথেয় আর এটা কি করে লাভ হবে তৎবৃদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবায়া উপদেশে গেল গেলেন তত্ত্ব দর্শিন তত্ত্বদর্শী গুরু বৈষ্ণবগণ তার প্রতি শুধু হাত যোগ করলে তিনি কৃপা বর্ষণ করবেন তখন সম্ভব নয় গুরু মহারাজ বলছেন প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবা প্রণিপা পরিপ্রশ্ন এবং সেবা এই সেবার দ্বারা প্রণিপা পরিপ্রশ্ন এটা পুষ্ট হবে সুতরাং সেবাবিহীন অবস্থায় গুরু বৈষ্ণবগণের কৃপা লাভ শুধু হাত ধরে করলে কখনো সম্ভব নয় তবে অহৈতুকি কৃপা একটা স্পেশাল আছে সেটা হয়তো হতে পারে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার অন্তরালে কিছু একটা সেবা বৃদ্ধি আছে না হলে ওটা হতে পারে সুতরাং সেবা ভাবনা হচ্ছে আমাদের এই ভজন সাগর রাজ্যের একমাত্র পাথেয় এই সর্বাবৃত্তি যদি আমাদের না থাকে তাহলে সৎমান বিজ্ঞান পুত্রে উত্তম খাদ্যে পারিত নিষ্ণাতন ব্রহ্মণ উপসমাশ্রয় সৎমান প্রপদ্যে বিজ্ঞান পুত্রে উত্তম গুরুদেবের প্রতি যদি প্রপন্ন স্বীকৃত না হয় তাহলে গুরুদেব আমাকে কি দেবেন তার সঞ্চিত ধন এতদিন যা আহরণ করে সংগ্রহ করে রেখেছেন সেটা আমাদেরকে অত সহজে তিনি বিলি করে দেবেন আমাদের যদি আধার তৈরি না হয় নেব কি করে কখনো সম্ভব না ওই জন্য বলছেন গৌরজী সদারবাজি মহারাজ জীবন চরিত্রে তিনি দেখালেন সাক্ষাৎ বৈরের জমন তিনি বিপ্র রসম বলে প্রধান বুঝতে তিনি বিপ্রলম্ব ভাবযুক্ত এবং তিনি সাক্ষাৎ বৈরূপের মূর্তি সুতরাং এই বৈরূপের আমাদের প্রয়োজন ছিল পূজ্যবাদ নিত্যলীলা বিষ্ণুবাদ সপ্তরত শিশিরাম ভক্তিবেদান্ত শ্রী বিক্রম মহারাজ বলছেন যে বৈরূপে চাই কিন্তু বলছেন যে বৈরাগ্যের পৃথক করে আহরণ করার কোনো প্রয়োজন নাই যদি ভক্তি পরেশানুভব বিরক্তির অন্যত্র ভক্তি যদি তার ভগবানের প্রতি যদি অনুভবযুক্ত যদি ভক্তি উদিত হয় আনুষঙ্গিক এই বৈরাগ্যগুলো অনেকটি এসে যাবে তার জন্য সময় নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই সুতরাং ছিল গৌরকিশোর দারবাজি মহারাজ তিনি নবদ্বীপে অবস্থান গ্রহণ করতেন ওখানে ধর্মশালার কোন একজন ভদ্রলোক তিনি বললেন যে বাবাজি মহারাজ আপনার জন্য একখানা ঘর তৈরি করে দিই। বলে না না আমার কোনো ঘর নেই, আজকে ঘর দেবেন, কালকে আবার খাট চাই, তারপর গদি চাই, আমার খুব ঘুম হবে আমার, আর ভোজন সাথে কি করে হবে, তা আমাকে হয় আপনার ওই পায়খানাটা দিয়ে দেবেন, পরিত্যক্ত পায়খানা মানে ডেলি ইউজ করে ওটা নয়। তারপরে বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে। তারপরে ওরা ঘুমায় টমে দিয়ে খুব সুন্দর করে ওটাকে দেবে, সুন্দর করে দেবেন। ওখানে তিনি অবস্থান করতে লাগলেন। কেন, উদ্দেশ্যটা কি, যে জাগতিক লোক এসে আমাকে বিরক্ত করবে না, আমি নির্জনে ভজন করতে পারবো, কারণ পায়খানা দিয়ে এলে সবাই ঘৃণা করে, ওখানে যাবে না, আর আমার ভজন সম্পর্কে ঠিক থাকবে। একজন বললেন যে একদিন বললেন যে আপনার তো ওই শীতের দিন একটা কম্বল দিয়ে দিই, লেপ 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 দিয়েছেন, আর লেপটা তিনি উপরে তুলে রাখছেন ঝুলে। বলে এই কি ব্যাপার, বলে লেপ দেখলেই শীত আপনার হাতে ফলিয়ে যাবে, ও গায়ে দিতে হবে না। এর উদ্দেশ্যটা কি, যে আমাদের জাগতিক বিলাসিতার বস্তু সমূহকে পরিহার করা হচ্ছে ভোজন সাধ্য রাজ্যের একমাত্র উপায়। আমাদের আমরা দেখেছি, আমরা যখন প্রথমে আসি মহারাজরা এরা আমাদের ওই ভালো ভালো কাপড় পয়সা দিত না, মার্কিন কিনে এনেই দিত, তার হাত হাত করে মেপে দিত, মানে বেশি রকম কোথাও ঘুরে যাবে না, এরকম ছিল। সুতরাং আমাদের টেরিকটে জামা তো দেখলেন মহারাজ তো আগে হয়ে দাও, টেরিকটে জামা আর কেউ পড়তাম না, এখন তো আস্তে আস্তে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার মিলিয়ে চলতে হচ্ছে যায়। সুতরাং এর উদ্দেশ্যটা কি আছে, উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ভোগ প্রবণতাটাকে সংকুচিত করা। শাস্ত্রে যেগুলো বলছেন বাণী যে প্রবৃত্তির রেশা হতে না নিবৃত্ত মহাফল, প্রবৃত্তি মার্গে থেকে আমাদের নিবৃত্তি মার্গে এনে ভজন সাধনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য, এটা কিন্তু নয় যে তোমাকে সংকুচিত করে দিলাম, ওটা না। বৈরাগ্যর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের বিষয়ের মধ্যে যতটুকু সময় নষ্ট হবে সেগুলোর থেকে মনটাকে তুলে নিয়ে আসে ভগবানের দিকে এগিয়ে দেওয়া। এই জন্য মহাপুরুষগণের জীবন চরিত আদর্শ ঐরূপ ভাবে ওরা দেখিয়ে দেবে। ওদের কি অসুবিধা আছে, হ্যাঁ ওরা তো পার্শ্ব, ওদের কোনো চিন্তাই নেই, তথাপি তারা ঐরূপ ভাবে জীবনে কঠোর একটা আদর্শ কেন গ্রহণ করছে, উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার। এই ছিল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ, শ্রীচরণ সরজে নিবেদন জানাচ্ছি, তিনি কৃপা করুন, অহৈতুকি কৃপা, যাতে আমার হৃদয়ে যদি কোনো বাসনা স্থিতি থাকে সেগুলো দূরীভূত হয়, এবং সকল বৈষ্ণব মহারাজের শ্রীচরণে এই প্রার্থনা জানিয়ে যাতে আপনারা সবাই কৃপা করুন, যাতে ভক্তি রাজ্যে এগিয়ে যেতে পারি, এই আশীর্বাদ করুন। এই বলে আমার বক্তব্য আমি
ত্রিদণ্ডী মহারাজ
in their various instructions to the jivas have shown Vaishishya's speciality. We see in the life of Srila Bhaktivinoda Thakur, he was a magistrate, so erudite. He wrote books in English, he had a world vision, very broad in his preaching efforts. Whereas Srila Gauradeshwara's Babaji, his contribution, his gift was so substantial and necessary for us to hear and imbibe his moods of renunciation. They were so extreme in one sense, as Srila Gurudeva said. Sometimes he would just eat the mud from Radhakund. He would eat the mud from the clay from Jamuna. One time, some devotees, they wanted to have a celebration, one Mahotsav, and it was one Tirabhav. But they said, oh, we had no nice preparations, we had no flowers, no garlands, no facility to enjoy, no money to enjoy. So Srila Gauradeshwara Babaji said, oh, what is the problem? We will fast today and we will take naam. This is the festival. This is the real festival. So he's showing total neglect of this material world. He's showing by his example very clearly that everything in this material world is defective. Only the perfection comes in our meditation on Guru and Krishna and our taking of Harinam. So there's one verse in Srimad Bhagavatam, Ritevitam Yat Pratikyatam Nam Pratikyatam Tatam Tatsi Yat Atmanomayam Yatolasar Yatolasar. That anything in this world that has any value, it is not connected with Krishna, has no value whatsoever. It's simply an illusion in the darkness of this world. So Srila Gauradeshwara's Babaji, by his living example, he showed us this. He lived this truth of absolute renunciation. One time, a very wealthy grihastha with his new wife came to visit Srila Gauradeshwara's Babaji and was begging for his mercy. And Srila Gauradeshwara's Babaji, he said that, oh, this is your newly wedded wife, so you should serve her as Krishna Dasi. You should cook for her, you should honor her, you should render all service to her. If you're understanding the truth that she is Krishna Dasi, that she is not for your service, she is not for your enjoyment or exploitation. So many times, Srila Gauradeshwara's Babaji, he instructed like this. Another time, one wealthy person came to beg for the mercy of Srila Gauradeshwara's Babaji. Srila Gauradeshwara's Babaji, he gave him his contents. He said, you take these. This is my mercy. But Grihastha, he ran away in great fear that he would have to enter a more renounced lifestyle. So Srila Gauradeshwara's Babaji, by his profound example, he showed us very beautifully the sweetness of meditation on Radha and Krishna. And the not needed involvement in this world, in acts of this world. He showed us so profoundly, and his one greatness, or so many greatnesses, but one particular greatness, he took Srila Bhaktisiddhanta Saraswati eventually as his only disciple. Srila Bhaktivinoda Thakur, he requested his son, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, who was so erudite, Shruti Dara, completely knowledgeable in all shastras, to take shelter of this personality who apparently was illiterate. But as Pujabhad Prajapati Maharaj has just described, that he was so erudite in his in an assembly where Bhagavatam was being discussed, he would know if there was the slightest discrepancy in any verse or any siddhanta that was being presented. So Srila Gauradeshwara's Babaji was not at all not aware or conversant with all the conclusions of the Shastra. So then, after many requests from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, finally Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he told him that he would leave his life unless Srila Gauradeshwara's Babaji Maharaj took him as his shishya, as his disciple. And then eventually, Srila Gauradeshwara's Babaji, he took Srila Bhaktisiddhanta Saraswati as his only disciple. There are so many beautiful, beautiful pastime stories of Srila Bhakti of Shiva, Gauri Shodas Maharaj. We just learned from Prasad Maharaj how he was given a very beautiful quilt, a blanket, and he put that blanket on the roof of his kutira. He had no need for anything in this material world. So it's very important for us to imbibe these instructions now in this time of Western materialism where there is so much, it's so easy to acquire money in this world and various objects of this world. If the devotee is enamored by these objects, then he must be sure that actually this is not a profitable path to take. He will get no bhakti from this path. If he's pursuing, Srila Rupa Goswami has described how anything unnecessary would come to him, he just throw it in the Jamuna. So similarly in our lives, we must very cautiously travel through this life. So much wealth may be offered to us in different forms. All of us will be offered different forms of enjoyment in this material world. So as we progress gradually, we must learn to give up these. But it's not just simply giving up, it's embracing the positive aspect. If one begins to have a taste in bhajan, a taste in naam, a taste in guru seva, then all these very minor desires will just quickly be washed away in the current of our bhakti. So Srila Gopeshwara's Babaji, he gave so many examples in his life. He was a living example of Yukta Vairagya, a living example of a tyagi, but completely, deeply immersed in his bhajan. And Srila Bhaktivinoda Thakur, such a great, great personality, this was his most bosom friend. One time Srila Gopeshwara's Babaji, he came to Svananda Seva Kunj in Gautam, and he came late in the night, and Srila Bhaktivinoda Thakur, he was asking, how did you possibly get here? From the boat to my place, there's so many ditches and it's so dark and you're practically blind from your austerities. And he said, oh, one boy took me by the hand and led me here. So we have no idea of actually the depth of Srila Gopeshwara's Babaji, Maharaj's connection with Radha and Krishna. We understand from scripture he is completely in line. So therefore he is coming in such a high conception of Radha and Krishna Seva. So on this day we can very much imbibe his mood. We should take deep vows internally to reject this, the pleasures of this material world. They will get us nowhere except speed the mind up, they'll just excite us, they'll take us far away from anything pure, which we actually want to understand. We want to understand the gravity of bhajan, what Srila Gurudeva's instructing in Madhurya Kadambini. These instructions can be held tightly with a mood of renunciation. Srila Gaurakishodas Babaji Maharaj Ki Jai.
आज एकादशी के वजह से बहुत से लोग अभी परिक्रमा देना चाहते हैं, इसलिए अभी क्लास समाप्त किया जाता है शाम को 5 बजे से विभिन्न पहलुओं पर। फिर गौर कुशोत्तम महाराज जी की शिक्षा और चरित्र का हम लोग गुणान बांध कर उनके चरणों में पुष्पांजलि देंगे। आज यहीं तक रहे।
हरे कृष्ण। आज समय हरियाणा निकल अवस्था